आप लोग क्या मालूम हो कि आज 1959 अप्रैल का 25 तारीख है, दिन के 10:30 बजे और मौलाना अब्दुल हक विद्यार्थी का 7वां तकरीर सिनेमा लेक्चर में शुरू होने वाला है।
कुरान शरीफ की एक आयत को मैंने सब आप लोगों के सामने पढ़ा है। इसमें यह बताया गया है कि खुदा ताला एक तुम्हें दृष्टांत देता है, तुम्हारे सामने एक मिसाल रखता है। वो मिसाल क्या है? ये झाड़ और ये दरख्त जो तुम रोज देखते हो, तुम्हारी आंखों के सामने आते रहते हैं। एक अच्छे दरख्त और एक अच्छे झाड़ या एक अच्छे वृक्ष की मिसाल एक कामिल मोमिन या अच्छे इंसान की मिसाल है। तो की उपलहा तुल्लाहीन बीज में रब देहा, वो अपने रब के हुक्म से वो अच्छा दरख्त हर वक्त फल देता रहता है। इसी तरह से अल्लाह ताला मिसालें बयान करता है लोगों के फायदे के लिए, ताकि वो उससे नसीहत हासिल करें। ये आयत सूरत इब्राहिम की आयत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलमानों के ख्याल में एक बहुत बड़े पैगंबर थे। ईसाई और यहूदी लोग भी उनको बहुत बड़ी हस्ती और बहुत बड़ा इंसान समझते हैं। आप यूं समझ लीजिए या हमारे हिंदू भाई ये समझ लें कि इब्राहिम और ब्रह्मा एक ही हस्ती थी। हिंदू भाई उसको ब्रह्मा जी कह देते हैं, मुसलमान उसको इब्राहिम कह देते हैं। इन दोनों के अंदर कोई ज्यादा फर्क मुझे नजर नहीं आता। जिस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक दादे के साथ जो खुदा को नहीं मानता था, नास्तिक था, उसके साथ उनकी एक तासरत हो गया, बहस हो गई, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा खुदा वो है जो जिंदगी देता है और मारता है। उसने आगे से कह दिया, मैं भी लोगों को जिंदा करता हूं मारता हूं। जिससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिक्र में यह कुरान शरीफ में यह बात बयान की गई है, इसी तरह से वेद के अंदर भी नेमा ऋषि का जिक्र आता है। उसके मुकल्ले करीब वेद में लिखा है, नंद्रो अस्थि न इंद्रो अस्थि नेमा। नेमा जो था वो ये कहता था कि इंद्र नहीं है, और आगे वो क्या कहता था, तेज ग्रत जिसने देखा है खुदा को, कहाँ है खुदा दिखाओ मुझको, किम अभिस्वाम, क्यों हम इसकी पूजा करें, क्यों हम इसकी इबादत करें, क्यों हम उसकी आराधना करें। जिसे ऐसे वेद में ये लिखा हुआ है कि नेमा ऋषि था और वो ये कहा करता था कि खुदा नहीं है, उसी तरह से कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स था जिसका नाम नमरूद था। मुसलमान उसको नमरूद कहते हैं, और इब्रानी जुबान में बाइबल में हिब्रू बाइबल के अंदर उसका नाम है निमरूद। कुछ भी अल्फाज आपस में मिलते जुलते हैं, जैसे इब्राहिम और ब्रह्मा मिलते जुलते हैं, उसी तरह से नेमा और निमरूद भी मिलते जुलते हैं। वो भी दारिया था और वो भी दारिया था, खुदा को नहीं मानता था। तो अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको किस तरह से खुदा समझाते हैं, वो मैं समझता हूं हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक बड़ी गया सुनने की बात होगी कि हम ये इस जमाने के अंदर जब बहुत से लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि खुदा नहीं है, या ये कहते हैं कि भाई दुनिया के लिए काम करो, क्या करना है, ये दीन धर्म को ये सब झगड़े हैं और फजूल बातें हैं, इनको छोड़कर अपनी दुनिया के काम किया करो। तो उस जमाने में भी, जिस जमाने में ब्रह्मा जी या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, उस जमाने में भी एक इसी तरह का इंसान था जो कहता था कि निंदो अस्ति इति नेमा, इंदर नहीं है ये नेमा कहता था। बात दर हकीकत यह है कि जिस तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको खुदा समझाया है, वो यूं आप समझ लीजिए कि उसको दृष्टांत दिया गया, ये घाट देख लो तुम जो तुम्हारे सामने है। अरे खुदा को मालूम करने के लिए ये जरूरत नहीं है कि एक आदमी हिमालय पहाड़ की चोटी पर जाए या समुन्द्र के नीचे गोता लगाकर देखे खुदा है या नहीं। जो चीजें तुम्हारे सामने हैं, जो कुदरत ने पैदा की हुई हैं, जो खुदा की बनाई हुई हैं, वो बताती हैं कि खुदा है या नहीं। एक चीज के ऊपर मार्का देखकर जिस पर लिखा हुआ होता है लिप्टन टी या उसके ऊपर कोई और लिखा हुआ होता है नेशनल कॉफी या कोई और चीज, उसको देखकर मार्के को देखकर हम समझ जाते हैं ये किसकी बनाई हुई चीज है, कौन सी कंपनी है, कौन सा शख्स है जिसने इसको बनाया। इसी तरह से अगर ये चीजें खुदा की बनाई हुई हैं और यकीनन बनाई हुई हैं, तो इनके ऊपर भी एक मार्क होगा, एक निशान होगा जिससे हम समझेंगे ये किसकी बनाई हुई है, मेरी और आपकी बनाई हुई है या कोई और बड़ी हस्ती है जिसने इनको बनाया है। तो इसलिए दलाल तो बड़े बड़े गया पेचीदा और मुश्किल हो सकते हैं जिनके जरिए से हम खुदा को साबित करें, लेकिन ये दरख्त जो इतने कभी कभी 35 फुट तक 40 फुट तक 50 फुट का दरख्त हमारे सामने खड़ा होता है, वो अपनी जुबान में कुछ हमसे कहता है, लेकिन हम या यूं समझ लीजिए इंसान जिन चीजों को रोज देखता है उनको वो देखता हुआ भी नहीं देखता, क्यों नहीं देखता, कभी गौर नहीं करता, ये तो रोज की चीजें हैं, मैं उनके नीचे से गुजर जाता हूं, ये नहीं है कि कभी उनके नीचे खड़ा होकर या उनके सामने खड़ा होकर सोचूं और गौर करूं कि ये झाड़ और दख्त जो है मुझे क्या सबक देता है, क्या दलील देता है। तो भाई चार किस्म की दलील है खुदा की हस्ती के मुतल्लिक, खुदा है या नहीं, ये झाड़ और दख्त मुझे दे रहा, वो कौन सी है दलील, पहली दलील ये है कि ये आप जानते हैं कि एक छोटा सा बीज था जिसको आपने जमीन के स्पुर्द कर दिया, हर एक रास्ता एक बीज होता है, उसको आप जमीन कहीं से लगा देते हैं, उसको कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि इसकी एक छोटी सी सुई नीचे की तरफ जाती है और एक ऊपर की तरफ जाती है। नीचे भी एक जमीन का दस्त बनकर चला जाता है और ऊपर भी एक दस्त बनकर चला जाता है। जितना वो ऊपर जाता है उतने ही जमीन के नीचे नीचे भी जाता है। वो सुई जो जमीन के नीचे जाती है उसको जड़ और मूल या अरबी जबान में उसको असल कहा जाता है। जितनी जड़ जमीन के नीचे ज्यादा गहरी होगी किसी दरख्त की, उतने ही वो दरख्त ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए कहा असलोहा साबितुन व फरोहा फिसमा, एक ऐसा दरख्त है तुम्हारे सामने कि जिसकी जड़ जो है बहुत गहरी जमीन के नीचे गई है और वो ऊपर भी उसकी शाखाएं आसमान के ऊपर फैली हुई है। वो ये दो तरह का काम जो उसके अंदर होता है, एक जमीन के नीचे और एक जमीन के ऊपर। जमीन के नीचे जो चीज गई है जड़ या मूल उसकी, वो जमीन में से उस दरख्त के बनाने वाले अजजा को जरूरियात को जिनकी दरख्त जरूरत है वो छांटकर ऊपर भेजती रहती है। और ऊपर का जो हिस्सा है वो इस हवा में से रोशनी में से धूप में से गुजार को हासिल करके वो सारे दरख्त के नीचे भेजता रहता है। ये जो इसके अंदर एक काम इसके अंदर हो रहा है, इससे अगर कोई शख्सियां मैकेनिकल इंजीनियर हो उससे आप पूछिए कि जब मैं जो जमीन से पानी लिया है इसका एक एक कचरा ऊपर का जो खेती का पत्ता है वहां तक वो पहुंचाता है। नीचे से जल पानी लेती है और वो तमाम पत्तों के अंदर कितना भी ऊंचा ग्रास क्यों न चला जाए वो पानी को पहुंचाती है। ये गोया वाटर सिस्टम जो है उसके अंदर कि किस तरह से नीचे से ऊपर पानी पहुंचाया जाता है, ये हम जानते हैं कि जहां वाटर वर्क्स होते हैं वहां बहुत बड़ी हमें मशीनरी लगानी पड़ती है और मशीनरी लगाकर पंपों के जरिए से डंकी पंप के जरिए से हम उसको पानी को ऊपर प्रेस करते हैं, धकेलते हैं तो पानी ऊपर दूसरी मंजिल पर या तीसरी मंजिल पर पहुंच जाता है। लेकिन ये दरख्त तो मुझे नजर आ रहा है, आया इसके अंदर भी कोई डंकी पंप लगा हुआ है तो जिसकी खट 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 आवाज से मेरे कान जो हैं वो भी कुछ बुराई महसूस करते हैं, शोर होता है, उसमें तेल डालो, उसमें कोयला डालो, उसमें ये डालो वो डालो तो जाकर वो डंकी पंप चलेगा और हर एक उसका पुर्जा अगर ठीक है तो ठीक काम देगा और अगर इसके पुर्जे के अंदर किसी जगह भी कोई गलती हो जाए तो वो डंकी पंप नहीं चलता और न पानी दूसरी मंजिल पर पहुंचता है। लेकिन ये दरख्त जो आपके सामने मौजूद है उसके अंदर तो कोई खटखट हमें नजर नहीं आती, लेकिन पानी नीचे से जरूर चढ़ता चला जाता है और तमाम पत्तों को मिलता चला जाता है। हर एक गया आप यू समझिए उसके अंदर जितना काम हो रहा है तो बहुत बड़ी ताकत का काम है। उन लोगों से पूछो जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं कि दूसरी मंजिल पर पानी पहुंचाने के लिए कितनी ताकत की जरूरत होती है, कितनी पावर की जरूरत होती है और तीसरी मंजिल पर पहुंचाने के लिए कितनी ताकत की जरूरत होती है और फिर इतना बड़ा जो दस्त है उसके पत्ते पत्ते तक पानी पहुंचाने के लिए कितनी बड़ी ताकत और कुवत की जरूरत होगी कि नीचे से जाकर पानी को ले और वो ऊपर तक पहुंचा दे। आया ये दस्त ने जो अपने अंदर सिस्टम रखा हुआ है पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाने का, भाई ये उसने खुद अपने आप बना लिया है या किसी बड़े इंजीनियर व बड़े कारीगर का ये काम है? ये खटखट भी नहीं है, कुछ नहीं है, न वहां तेल है, न इंजन है, न कोई पुर्जे है, न कोई खड़ा है, न कुछ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है सारा दिन रात कर दिन इसके अंदर वो काम करता रहता है और बराबर पानी को पहुंचा रहता है। जल का काम है पानी को नीचे से लेकर उनको पहुंचाना, लेकिन होना ये चाहिए था अगर कोई गया मेरे जैसा आदमी होता या कोई मामूली आदमी होता उसको हम कहते हैं कि भाई पत्तों को पानी देना है तो वो तो जनाब पत्तों को पानी में भिगोता, पानी गया पत्तों को पहुंचाता, लेकिन ये कभी मैं करता कि पहले नीचे पानी रखो और फिर आहिस्ता आहिस्ता पत्तों को पहुंचाओ। अरे जरूरत तो है पत्तों को और ये पानी जो है वो नीचे है, तो ये कारीगरी जो है ये गया साबित करती है कि इसको बनाने वाला बहुत बड़ा दाना और बहुत ही बड़ा गया खूबसूरत है जिसने ये निजाम रखा। वरना यूं चाहिए था कि पानी ऊपर से आता है पत्तों को डुबोच लेते, उनको जरूरत है ना पानी की, जैसे ऊपर से कोई चीज फेंकी जाए आगे हाथ कर दो आपके हाथ में आ जाएगी, लेकिन जो क्या है कि नीचे 50 फुट 25 फुट नीचे से पानी लेकर ऊपर पहुंचाना, मालूम होता है कि इसको बनाने वाला बहुत बड़ा दाना और बहुत बड़ा हकीम है। ये अपने आप ऐसा कभी नहीं हो सकता था कि एक बेजान जीव जो है वो इस तरह से इतना काम करे कि वो पानी के एक एक कतरे को लेकर ऊपर तक पहुंचाता चला जाए, जो ये साबित करती है कि खुदा है और वो बहुत बड़ा दाना और बहुत बड़ा हकीम और बहुत बड़ा साइंस जान खुदा है कि जिसने एक दरख्त के अंदर ये निजाम रखा है कि किस तरह से पानी ऊपर पहुंच कर चला जाता है। दूसरी चीज जो है वो ये है, उस दरख्त को आप देखिए, कुरान शरीफ फरमाता है कि इस दरख्त को देखो, हमने उसके अंदर आग को रखा है और पानी भी है। ये आप जानते हैं दोनों की आपस में दुश्मनी होती है, आग और पानी की। जहां आग होगा वहां पानी न होगा, जहां पानी होगा वहां आग न होगी। वो दोनों एक दूसरे को बुझा देंगे, एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन ये क्या है, जहां सदर अकबर नारंग खुदा ताला ने सदर दरख्त के अंदर आग रखी हुई है और वो बुझती नहीं है पानी के जरिए से। कैसे आग रखी हुई है, जो जितनी सूर्य की उसके ऊपर धूप पड़ती है, हर एक दरख्त अपने उस रेशे के मुताबिक, अपने उस कानून के मुताबिक जो खुदा ने उसके लिए बना दिया है, वो इस धूम में से आग को लेकर रहता है, लेकर रहता है, लेकर रहता है, अपने अंदर उसको जमा करता चला जाता है। पानी नीचे से गया, धूप ऊपर से आई, दोनों की दोनों चीजें जो है उस दरख्त के अंदर मौजूद हैं। अब आप गौर कीजिए कि जब उससे पानी आप अलग कर देते हैं, सूख जाता है, अब उसको आप मैसेज दिखा दीजिए, वो आग आपको दे देगा, उतनी आग देता है जितनी उसने सूर्य से ली है। उसके अंदर कोई बेईमानी नहीं करता, कोई किसी किस्म की ख्यानत नहीं करता। हर एक दरख्त जिस किस्म का भी है वो एक खास नस्बत से सूर्य से आग को लेता है। हर एक दरख्त एक जैसी आग नहीं लेता। बाल दरख्त वो होते हैं, उनको जब जलाया जाए वो ज्यादा आंच देते हैं, उनमें गर्मी ज्यादा होती है, आग ज्यादा होती है। बाल वो दरख्त होते हैं उनके अंदर आग कम होती है, वो सिर्फ धुएं देते हैं और कुछ नहीं देते, आग नहीं देते। इसलिए आप याद रखिए कि हर एक दरख्त जो दुनिया के अंदर मौजूद है, एक अकलमंद आदमी जो है वो ये जानता है कि किस तरह से इस लकड़ी को नाप कर, वो आपको बता देगा कि इस लकड़ी के अंदर कितने डिग्री की आंच और आग मौजूद है। हर एक दरख्त अलग अलग मालूम होता है कि वो एक कानून के मातहत है, एक लॉ के मातहत है, उसको जितना हुक्म है उतना ही वो देता है आग को, सूरज में से या धूप में से ज्यादा तो नहीं लेता। गौर कीजिए आप कि पानी जो होता है, नमकीन पानी भी है, मीठा पानी भी है, उसके अंदर भी मछली होती है और उसके अंदर भी मछली होती है, लेकिन मछली नमकीन पानी से ज्यादा नमक अपने अंदर नहीं लेती, और न मीठे पानी की जो है वो बगैर नमक के रहती है। नमक उसके अंदर भी आता है और उसके अंदर भी आता है, लेकिन जो नमक वाले पानी के अंदर, साल्ट उस पानी के अंदर होती है, वो भी उतना ही नमक लेती है जितना उसकी जिंदगी के लिए जरूरी होता है, उससे ज्यादा नहीं लेती। इसी तरह से आप समझिए, ये दरख्त जो है, हर एक दरख्त जो है, जिस किस्म का दरख्त है, वो एक खास मकदार, एक खास आग का समझिए आंच जो है वो लेता है, आग लेता है, ज्यादा नहीं ले सकता। तमाम दुनिया के अंदर जितने वो दरख्त होंगे, मतलब हम जब अपने पाकिस्तान में या पंजाब में थे, तो हम ये देखते थे कि भाई जब लकड़ी खरीदने के लिए जाते थे तो भाई चीकर की लकड़ी लो, या क्या नाम है उसका, एक और दस दिन सब भूल गया हूँ, हालांकि पंजाब का रहने वाला हूँ, बहुत बड़ी हुआ, उसके अंदर आंच समझी जाती है, वो लकड़ी हम जाकर लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं इस लकड़ी में ज्यादा आग को जगह किया हुआ है, अपने अंदर स्टोर किया हुआ है, इससे ज्यादा गया हमें फायदा होगा, और वो लकड़ी जो सिर्फ धुआं देने वाली हो उसको हम कभी नहीं खरीदते। तो इसलिए मेरे दोस्तों दूसरी चीज जो है वो ये, पहला ये कि इसके अंदर पानी को ऊपर पहुंचाने का एक सिस्टम है, दूसरा ये कि ऊपर से आग लेने का एक सिस्टम है, कि किस तरह से वो आग जो है सूरज में से लेकर चली जाती है और फिर उसको अपने अंदर जमा करती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है वो खुदा है कि जिसने सब दरख्त के अंदर तुम्हारे लिए आग को रखा गया है, और अगर तुम चाहो कि पानी और आग को एक जगह जमा करके रखो तो नहीं रख सकते। आग पानी को बुझा देगी और आप पानी जो है वो आग को बुझा देगा और आग जो है वो पानी को उड़ा देगी, ये दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन हर एक दरख्त को देखो क्या उसके अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं या नहीं, तो ये इसी सूरत में मौजूद हो सकती हैं। कोई परमात्मा हो, कोई खुदा हो, जिसने उसके लिए ये कानून मुकर्रर कर दिया है, वो गया इस तरह से उसके अंदर काम करता है। वरना न दरख्त को ये समझ है और न किसी इंसान की समझ में ये बात आ सकती है कि किस तरह से इन दोनों चीजों को इकट्ठा किया जा सकता है। तीसरी चीज जो हमें बताती है कि खुदा है, हर एक दरख्त को जब आप देखते हैं तो देखते हुए आपको ये मालूम होगा कि न सिर्फ पानी और आग बल्कि वो कुछ और काम भी करते हैं। वो क्या काम करता है? उसका हर पत्ता जो है, हर एक पत्ता, उसके अंदर पत्तों को आप देखते हैं उनका रंग सफेद होता है, ग्रीन होता है। ग्रीन को हम अपनी साइंस की इस्तेमाल में क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के माने वो ग्रीनिश मैटर, वो सफेद मादा जिससे पत्ता हमें सफेद नजर आता है, हरे रंग का नजर आता है। उसका क्या काम है हर पत्ते के अंदर? उसका ये काम है کہ وہ چیز جو گویا ہمارے منہ سے نکلتی ہے یا جانداروں کے منہ سے نکلتی ہے اس کو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں. یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوتی ہے یہ ہوا کو گندی کرتی رہتی ہے. جتنا جاندار ہے ایک چھوٹی سی چینٹی کے منہ سے بھی کچھ نکلتا ہے, مچھلی کے منہ سے بھی کچھ نکلتا ہے, گائے کے منہ سے بھی کچھ نکلتا ہے, انسان کے منہ سے بھی کچھ نکلتا ہے. دنیا کے اندر کتنے زندہ جاندار ہیں, ہر ایک کے منہ سے کچھ نہ کچھ وہ زہریلی چیز نکلتی ہے. لیکن اگر وہ زہریلی چیز جو ہے دنیا کے اندر اسی طرح رہے اور اس کا کوئی انتظام نہ ہو کہ اس کو صاف کیا جائے, تو کبھی بھی یہ زندگی جو آپ کو نظر آ رہی ہے دنیا کے اندر زمین کے اوپر کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. ارے اتنے ہوا کو خراب کرنے والے یہ چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے لے کر بڑے سے بڑے جانور تک رات دن وہ سانس لیتا ہے, رات دن وہ سانس لیتا ہے. اور کتنے سو گیلن ہے ہوا کا جو ہم رات دن اندر لے جاتے ہیں اور گندی کر کے باہر پھینکتے چلے جاتے ہیں. بھائی ہوا تو بند جلدی ہم نے کر دی لیکن اس کی صفائی کا انتظام کیا ہے؟ وہ ہر ایک پتا جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ کیا کرتا ہے, تمہاری گندی ہوا کو لیتا ہے, لے کر اس میں سے کاربن کو الگ کر دیتا ہے, آکسیجن کو الگ کر دیتا ہے, کاربن گیس کو دے دیتا ہے, آکسیجن ہمیں دے دیتا ہے. اس میں ہماری زندگی ہے اور گیس کی زندگی اس کاربن میں ہے جو ہم نے اپنے اندر سے باہر نکالی ہے. تو غور کیجیے آپ, ایک جگہ ہم نے ایک میوزیم دیکھنے کے لیے ہم گئے, وہاں بہت بڑی ایگزیبیشن تھی. وہاں انہوں نے ہمیں دکھایا کہ ایک شیشے کا بند برتن ہے, اس بند برتن کے اندر ایک گھاس کا پودا تھا اور ایک مچھلی بند تھا, دیکھو باہر سے کوئی ہوا نہیں جاتی تھی. دکھایا اس نے یہ گیا تھا کہ یہ ساری دنیا کا سمجھو خلاصہ اور گریب ہے. اس طرح سے جو کچھ گھاس میں سے نکلتا ہے وہ مچھلی کی خوراک ہے, اور جو مچھلی کے منہ سے نکلتا ہے وہ گھاس کی خوراک ہے, اور دونوں زندہ ہیں. اگر دونوں میں سے ایک کو نکال لیا جائے تو مچھلی مر جائے گی یا گھاس جو ہے وہ سوکھ جائے گا, کسی کام کا نہیں رہے گا, کبھی زندہ نہیں رہ سکتا. اسی طرح سے آپ سمجھیے یہ ساری دنیا کا کارخانہ کیا ہے, یہ اتنے گھاس خدا نے کیوں لگا دیے؟ وہ ایک معمولی گھاس کی زمین میں سے نکلتا ہے, وہ کوچی اکلہا کنگا ہیمن ہر وقت ہمارے لیے غذا اور مفید کام کرتا چلا جاتا ہے. جب تک وہ زندہ ہے, جب تک اس کے اندر وہ خبر گنڈ موجود ہے, جب تک اس کے اندر گرینک میٹر موجود ہے, جب تک اس کے اندر وہ ہرا رنگ موجود ہے, اس وقت تک وہ ہمیشہ ہماری خدمت میں کھڑا ہمارا کام کر رہا ہے, ہمیں صاف ہوا دیتا ہے, ہماری گندی ہوا جو ہے اس کو کاٹ اور صاف کر دیتا ہے, اور اس میں سے کاربن جو ہے وہ دست دے دیتا ہے. آیا بھائی یہ نظام جو ہے بنا ہوا, کیا یہ کسی انسان کا کام ہو سکتا ہے؟ کیا یہ انسان خود یہ کام کر سکتا ہے؟ کیا یہ دست اپنے آپ کام یہ کر سکتا ہے؟ کسی بہت بڑے سائنسدان اور فلاسفر کا یہ کام ہے کہ وہ اس طرح سے اس میں ایک ایک پتے, اور پتا کیا ہے, وہ ایک ورک شاپ, یہ مت سمجھیے آپ معمولی چیز ہے, وہ ایک ورک شاپ ہے. لیکن انسانوں کے ورک شاپ میں اور خدا کے بنائے ہوئے ورک شاپ میں فرق ہوتا ہے. انسانوں کا بنایا ہوا ورک شاپ بہت بڑی بلڈنگوں کے اندر بڑی بڑی مشینری لگائی جاتی ہے, اتنا شور ہوتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں. لیکن جو خدا کے ورک شاپ ایک ایک پتے کے اندر موجود ہے, وہ بڑے آرام کے ساتھ جو ہے کاربن کو الگ کرتا جاتا ہے, آکسیجن کو الگ کرتا جاتا ہے. کسی سائنسدان اور میکینیکل انجینئر سے پوچھو کہ اگر انسان کو یہ کہا جائے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں سے تم گویا کاربن کو الگ کرو اور اس میں سے آکسیجن کو الگ کرو, وہ یہ کہے گا کہ اس کے لیے تو بہت بڑے کارخانے اور مشینری کی ضرورت ہوگی. لیکن یہ قدرت کے بنائے ہوئے پتے چھوٹے چھوٹے پتے ہیں, اور وہ کس طرح سے وہی کام کرتے ہیں کہ جو انسان بہت روپیہ خرچ کر کے اور بہت قسم کی جو ہے مشینری بناتا اور اپنا دماغ لگا کر وہ اتنا کام نہیں کر سکے گا کہ جتنے یہ خدا سے بنائے ہوئے پتے کام کرتے ہیں. چوتھی بات یہ ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی جو زمین کے اندر آپ نے لگا دیا, وہ ایک حصہ اس کا زمین کے نیچے چلا جاتا ہے اور ایک حصہ اس کا اوپر چلا جاتا ہے. تو زمین میں سے جڑ جو ہے وہ صرف اتنا ہی نہیں مول کہ وہ صرف پانی کو ہی اوپر پہنچاتی ہے, نہیں وہ اور بھی بہت سے کام کرتی ہے. اس کا کام کیا ہے؟ یوں آپ سمجھ لو کہ دنیا کے اندر ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے. یوں سمجھو ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے. جڑ جو ہے وہ عورت ہے اور اوپر کا تنا جو ہے وہ مرد ہے. عورت کا کام تاریکی کے اندر, مشکلات کے اندر, دکھوں کے اندر زمین میں سے چیزوں کو تلاش کرنا, اور اوپر کا جو حصہ ہے اس کو دیتے چلے جانا. وہ نیچے گھر کے اندر رہتی ہے, सारे घर के जितने मुशक्कत और मुसीबत के काम होते हैं वो उसी तरह से करती है कि जिस तरह से एक जड़ जो है वो जमीन के नीचे आराम से नहीं, अरे तना तो बड़े आराम से ऊपर चला जाता है, लेकिन जड़ को पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, जमीन के साथ लड़ाई करनी पड़ती है, तो जाकर नीचे घुसती चली जाती है। और देखो उसका अंधेरे के अंदर काम है, रोशनी के अंदर उसका काम नहीं है, लेकिन उसकी मजबूती कितनी है कि वो पत्थरों को किस तरह से फाड़ती चली जाती है। मगर देखो तो वो ऊपर के तने की तरह नरम नहीं होती, खस्त नहीं होती बल्कि नरम होती है, जड़ होती है वो नरम होती है। औरत भी नरमी बनाई गई है, खुदा ने नरम उसको बनाया मर्द के मुकाबले में, लेकिन नरमी के जरिए से जिस तरह पत्थर को तोड़ा जा सकता है उससे सख्ती के जरिए शायद तोड़ना मुश्किल होगा। इसलिए वो जो नीचे नीचे जाती है तो भाई आप ही जानते हैं, कभी आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता होगा तो औरत जब एक मीठी सी बात कह देती है ना तो औरत का सारा गुस्सा जो है वो जाता रहता है। वो जो काम नरमी से कर लेती है मर्द सख्ती के साथ वो काम नहीं कर सकता। माँ की गोद के अंदर बच्चा जिस तरह आराम के साथ सीख लेता है बहुत सी बातें, माँ बाप जो है वो डंडा उठाना जानता है, इसके सिवा उससे नरम बात करनी उसे नहीं आती। इसलिए ये याद रखो कि वो घर जो नीचे जाती है वो पत्थरों को फाड़ती हुई किसानों के अंदर अपना घर बनाती हुई वो दरख्त को देती चली जाती है। क्या चीज देती है? जो जमीन में से उसको मिलता है दरख्त के लिए वो सब कुछ ऊपर पहुंचाती रहती है, भेजती रहती है, भेजती रहती है। एक अमेरिकन शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, वो कहता है मैं बाग में गया और मैंने वहां देखा कि फूल थे वहां, मैंने कहा ए फूलो तुम क्यों इस तरह से हंसते हो और खुश होते हो? उन्होंने कहा इसलिए हम हंसते हैं कि लोग भी हमें देखकर हंसे और खुश हो, लोग भी हमें देखकर हंसे और खुश हो इसलिए हम हंसते और खुश होते हैं, लोग हमें देखें और हमारी तारीफ करें। मैंने कहा अच्छा इसलिए कि लोग तुम्हें देखें और तुम्हारी तारीफ करें। फिर मैं जब से मुखातिब हुआ तुझे तो कोई देखता भी नहीं, तू इतनी मेहनत क्यों करती है? जब को कोई नहीं देखता कि उसका अंधेरे के अंदर क्या काम हो रहा है, जमीन के नीचे क्या काम कर रही है, तू किस लिए मरती है और इतनी मेहनत करती है? उसने कहा देखो अगर मैं मेहनत न करूं तो गुलाब के सिर के ऊपर गुलाब का फूल भी ना होगा, नहीं हो सकता ना। जड़ की तो कोशिश करी जितनी वो मेहनत करती है तो गुलाब के ऊपर गुलाब का फूल लगता है, अगर जड़ में कोशिश करे तो कभी फूल ऊपर नहीं लगेगा, तो कभी दुनिया वो आय भी नहीं हो सकता जमीन के ऊपर गुलाब का पौधा क्योंकि उसकी जड़ न हो। तो इसलिए दुनिया के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक लोग वो होते हैं जो दुनिया के दिखावे के काम करते हैं, दुनिया देखे और खुश हो और उनकी तारीफ करे, और दुनिया के अंदर वो लोग भी होते हैं जिनको इब्राहिम कहना चाहिए, जिनको ब्रह्मा जी कहना चाहिए, वो दुनिया के लिए आप काम जरूर करते हैं फायदे के लेकिन दुनिया के दिखावे के लिए नहीं करते, बल्कि दुनिया को बनाने के लिए, संवारने के लिए और दुनिया की भलाई के लिए वो काम करते हैं। ये है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ये है ब्रह्मा जी का नमूना। तो ये भाई जितने काम उस लक्ष के अंदर हो रहे हैं, जड़ और क्या काम करती है? जड़ ये काम करती है तो वो जमीन में से तुम्हारे खाने और पीने के लिए कितनी चीजें हैं जो निकाल निकाल कर दस्त को देती चली जाती है, और दस्त आगे क्या है उसके अंदर फूल पैदा हो जाते हैं, उसके अंदर फल पैदा हो जाते हैं। किसी फूल के अंदर, किसी फल के अंदर लोहे का किस्सा मौजूद है, किसी के अंदर सोना मौजूद है, किसी के अंदर तांबा मौजूद है, किसी के अंदर और इस किस्म की धातें मौजूद हैं। पूछो जाकर जिन लोगों ने विटामिन पर बहस की है कि ये विटामिन क्या चीज है, कितने जो है उसके अंदर मिनरल साल्ट होते हैं, नमक होते हैं और कितनी दूसरी चीजें होती हैं, तो सब जो इसी जमीन में से निकाल निकाल कर ऊपर भेजती रहती है। जो है तुम्हारे लिए, तुम्हें अगर लोहे का टुकड़ा दिया जाए तुम उसे खा नहीं सकते, तुम उसे खा नहीं सकते। अगर सोने का टुकड़ा दे दिया जाए तो भी तुम खा नहीं सकते, अगर हीरा दे दिया जाए तो भी तुम उसे खा नहीं सकते। लेकिन जब जमीन के अंदर वो होता है वो जब उसको अक्साइड करके उसका कुश्ता बनाकर फल के अंदर भेज देती है और हमें जनाब तांबा भी मिल जाता है, हमें लोहा भी मिल जाता है, हमें सोना भी मिल जाता है, हमें हर एक वो चीज जो है वो मिल जाती है। किसी जगह हम ये देखते हैं हमने शुगर केन अपने लगाए, ये शुगर केन गन्ना जिसे कहा जाता है उससे हम शुगर बनाते हैं, लेकिन आप गौर कीजिए कि यह खुदा का बनाया हुआ कारखाना दस्त भी ये भी कई किस्म की शुगर हमें देता है, بعض جگہ وہ پیئر کی شکل میں دیتا ہے، بعض جگہ وہ کھجور کی شکل میں دیتا ہے، بعض جگہ وہ سیب کی شکل میں دیتا ہے، بعض جگہ کسی اور پھل کی شکل میں دیتا ہے. وہ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے دیتا ہے کہ اگر ایک طرح کی جو ہے شوگر آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو دوسری قسم کی شوگر پھل کھا لو، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اگر اس سے نہیں تو تیسری قسم کی کھا لو. پہنچنی تمہارے اندر شوگر ضرور چاہیے، لیکن وہ ایسے شریر پر پہنچے کہ تمہیں نقصان نہ دے بلکہ تمہارے لیے وہ فائدہ دینے والی ہو. اس لیے یاد رکھیے، شوگر انسانی صحت کے لیے نہایت ضروری چیز ہے، لیکن شوگر کوئی مفید ہوتی ہے کہ جو نیچر بنا کر ہمیں دیتی ہے، وہ نہیں جو ہم اپنی طرف سے بناتے ہیں. اس کے اندر نقصان زیادہ ہوتا ہے، فائدہ کم ہوتا ہے، لیکن جو نیچر اور قدرت ہمیں دیتی ہے کھجور کی شکل میں، سیب کی شکل میں، یا بکرے کی شکل میں، یا اور کسی پھل کی شکل میں، وہ شوگر زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. اس شوگر کی نسبت جو ہم گڑ سے بناتے ہیں، شکر سے بناتے ہیں، یا یہ کھانڈ وغیرہ جس سے بناتے ہیں. تو یہ بھائی جو کے ساتھ سامنے کھڑا ہے، یہ اتنی باتوں سے جو ہمارے یہ خدمت گار جب سے پیدا ہوئے ان کی وجہ سے کمر باندھ کر ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ساتھ ہوا ہمارے لیے پیدا کرتے ہیں، پھل ہمارے لیے پیدا کرتے ہیں، اور سایہ ہمارے لیے پیدا کرتے ہیں. جب آدمی گرمی کا مارا ہوا، دھوپ سے جلا ہوا ان کے اندر آ کر نیچے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر کتنی راحت ہوتی ہے، کتنی اس کے دل کے اندر خوشی ہو جاتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ یہ ہے کہ انسان ہو کر کبھی کبھی اس کو یہ نفرت ہو جاتی ہے کہ بھائی اپنے جیسے انسان کے ساتھ کوئی بھلائی کرے. مثلا ایک آدمی ہے جو اعلیٰ ذات کا ہے، میں کسی کا نام لے کر کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا. ایک ڈاکٹر تھا مدراس میں، تو ہسپتال میں یورپین ڈاکٹر بھی تھا، ایک آئر بھی تھا ڈاکٹر. تو ایک نائر یعنی ادنا ذات کا ہندو جو تھا، وہ درد اور تکلیف سے بےچارا مر رہا تھا. تو یورپین ڈاکٹر نے اس کو کہا، ڈاکٹر ذرا اس کی خبر لو جلدی. کہنے لگا نائر ہے نائر، مر جائے کوئی حرج کی بات نہیں. تو اس لیے جو آپ سمجھیے، ایک انسان ہو کر ایک دوسرے سے ہم نفرت کرتے ہیں. مسلمان ہے اور ہندو کافر ہے، بےمان ہے، کیا ہے، وہ اس کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے تیار نہیں. اسی طرح سے ہندو ہو کر ہندو کے ساتھ نفرت کرنے کہ میں اعلیٰ ذات کا ہوں اور یہ ادنا ذات کا ہے، یہ میرے چھت کے سائے کے نیچے نہیں آ سکتا، آرام نہیں کر سکتا. لیکن قدرت سے اس کو یہ چاہیے کہ سبق سیکھے کہ اگر ایک بھنگی بیج لگاتا ہے تو اس کے بیج کو بھی پرماتما پھل لگا دیتا ہے. ایک براہمن اگر بیج لگاتا ہے تو اس کو بھی پھل لگاتا ہے. چاہیے یہ تھا کہ اگر بھنگی نے بیج لگایا تھا تو پرماتما بھی اگر پکشپاتی ہوتا، اس کے دل کے اندر تعصب ہوتا، تو وہ یہ کہتا یہ تو بھنگی کا لگایا یا بیج ہے، مجھ کو یہ جھاڑ نہیں بنانا چاہیے، دست نہیں لگانا چاہیے. ہاں براہمن نے جو لگایا ہے ضرور اس کو پھل بھی لگانا چاہیے اور سایہ دار بنانا چاہیے. تو میرے دوست، دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں، ان قوموں نے نسل انسانی کے ساتھ نفرت کرنے کے بہت سے طریقے نکالے ہیں. دیکھیے، عیسائیوں کے اندر، یہودیوں کے اندر، ہندوؤں کے اندر، ارے مسلمانوں کے اندر، میں کسی کو نہیں چھوڑتا. یہ کوئی نہ سمجھا کہ مسلمانوں کے لیے رعایت کر دیا، میں رعایت کسی بھی نہیں کرتا. ان سب لوگوں کے اندر اپنے جیسے بھائیوں کے لیے نفرت، اپنے جیسے بھائیوں کے لیے نفرت. میں یہاں کئی مرتبہ، تیسری مرتبہ شاید یہاں آیا ہوں، جب بھی میں آیا ہوں میں نہیں چاہتا کسی کا دل دکھاؤں، لیکن لوگ جو ہیں وہ مجھ سے مختلف قسم کے مطالبے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کوئی ہندو کسی نے کہا صاحب یہاں پنڈت لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مولوی صاحب کو دیکھیں گے کہ یہ سنسکرت کتنی جانتا ہے. ارے بھائی میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، اگر تم کو معلوم ہو گیا میں نہیں جانتا تو کچھ فائدہ نہیں، اور اگر یہ معلوم ہو گیا کہ میں جانتا ہوں تو بھی اس سے کچھ فائدہ نہیں. میرے لیے کچھ نہیں ہے، میں نہ آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آتا ہوں اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی روپئے پیسے میں میری توازو کرے. آج تک میں نے کبھی آپ سے کوئی چندہ پھندا بھی نہیں مانگا. لیکن پھر ایک دوسرے صاحب، آپ یہ ایک صاحب نے کہا، تو میں نے کہا کہ بھائی وہ اگر اس نیوز سے آنا چاہتے ہیں کہ میرا امتحان لیں کہ میں سنسکرت جانتا ہوں کہ نہیں جانتا، تو اس نیت سے میرے پاس نہ آئیں. میں ان کو یہی کہوں گا میں نہیں جانتا، بس بات ختم ہو گئی. جب میں دعویٰ کروں کہ میں جانتا ہوں تو بے شک میرا امتحان لیں، لیکن جب میں یہ کہہ دوں میں نہیں جانتا تو وہ اپنا سا منہ لے کر چلے جائیں گے کہ بھائی یہ تو خود کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا، تو ہمیں امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح سے کوئی مسلمان صاحب اٹھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب آپ آج لیکچر میں یا کل لیکچر میں سنسکرت بولیے بہت، تاکہ ہندوؤں کو پتا چلے کہ مولوی صاحب سنسکرت جانتے ہیں. ارے بھائی میں لوگوں کو سچ اور صداقت اور سچائی دینے کے لیے آیا، میں یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ میں سنسکرت جانتا ہوں یا نہیں جانتا. अगर लोगों को ये मालूम भी हो जाए कि मैं संस्कृत बोल लेता हूं या जानता हूं तो भाई इससे क्या फायदा, उनको क्या फायदा। मैं चाहता हूं उनकी जिंदगी के अंदर, उनके जीवन के अंदर एक सुधार पैदा हो जाए, मेरे मुतलक नहीं बल्कि सच्चाई के मुतलक। कि सच्चाई क्या चीज है, हमें दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए। अगर वो ये जान जाए और मुझे ना जाने कि मैं कोई जानता हूं या नहीं जानता, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मेरे अगर बात से किसी को फायदा पहुंचता है मैं समझता हूं अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरी जात से मुतलक कोई ये कहता है कि ये कोई जानता है या नहीं जानता, इससे मुझे कोई रंज नहीं है। कोई मुझे ये कह रहे कि मौलवी साहब को हमने किताब दी थी वो पढ़ नहीं सके, नहीं था पता हुआ भाई इसमें क्या है। और कोई ये कह रहे कि नहीं वो तो तजुर्बा करना नहीं जानता, खड़ी नहीं जानता हूं, चलो इसमें कौन सी बात है। तो इसलिए जब भी मैं यहां आता हूं लोग मुख्य तरह से लोग गया, कोई मेरा किसी तरह इम्तिहान लेना चाहता है, कोई किसी तरह इम्तिहान लेना चाहता है, कोई हक लिख देता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं तमाम अपने सूरी निवासी भाई सूरी नाम निवासी भाइयों को बताना चाहता हूं, मैं आपको कुछ इलम देने के लिए आता हूं। वो इलम ये है कि आपको ये बताऊं कि आपकी जिंदगी किस तरह से अच्छी जिंदगी हो सकती है। अगर आप मुझसे ये सीख लें तो मैं समझूंगा मेरा मिशन और मेरा उद्देश्य मेरा मकसद कामयाब हो गया। लेकिन अगर मैं सिर्फ अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए आता हूं तो भाई इससे मुझे कुछ फायदा नहीं होगा। मैं ये समझता हूं कि मजहब का मकसद या दीन का मतलब क्या चीजें हैं। हिंदू भाई इसको कहते हैं धर्म, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार चीजें हैं। एक है धर्म यानी दीन, और उसके बाद है ये दुनिया की चीजों का इल्म हासिल करना, काम है इन चीजों से फायदा उठाना। मोक्ष यह बताता है कि इसी दुनिया के न हो रहो, कुछ अगली दुनिया के लिए भी करो, जहां तुमने जाना है ये मोक्ष भी कराता है। बला रहिए कितना मैं समझता हूं, ये उद्देश्य जो है, ये मकसद जो है कितना बुलंद है कि तुम दुनिया में दीन है तुम्हारा कोई होना चाहिए, दीन खुदा है और उसको मानो और उसकी भक्ति करो, उसके कहने पर चलो। और फिर ये कि सिर्फ खुदा को ही मानना कि राम राम ही बैठे करते रहे और दुनिया का कोई काम न करे, नहीं दुनिया के काम करो, अब इलम हासिल करो और काम ये इन सारी चीजों से परमात्मा कहता है फायदा उठाओ जो हमने तुम्हारे लिए पैदा किए हैं। लेकिन ये न हो कि तुम इसी दुनिया के हो जाओ, कुछ मोक्ष के लिए जहां से आगे जाने वाले हो उसके लिए भी कुछ करो। तो ये रही जो मैंने शख्स की कहानी आपको सुनाई। एक मैंने इस तरह से आपको बताया कि आया ये चार या पांच किस्म के जो दलाइल आपके सामने रखे, आया वो ये साबित करते हैं या नहीं कि परमात्मा है। ये जितने कानून उसके अंदर काम कर रहे हैं वो सारे के सारे कानून बताते हैं कि ग्रस्त इतनी समझ नहीं, इतनी अकल नहीं, और न वो कोई अकलमंद या युवा समझिए जान रखने ऐसी जान रखने वाली चीज है जैसा इंसान होता है कि वो सोच समझ कर काम करे, वो इस तरह का नहीं है। तो मालूम हुआ कि परमात्मा है जिसने ये कानून उसके अंदर रखा है और उस कानून के ऊपर वो ग्रस्त करके चला जाता है। तो जिस तरह से भाई एक ग्रस्त अपने कानून पर चलकर इतना बड़ा झाड़ हो जाता है और झाड़ होने के बाद वो हमारे लिए साया देता है, फूल देता है, फल देता है, इसी तरह से आप समझ लो इंसान भी उसके लिए भी एक कानून है। जैसे तमाम चीजों के लिए कानून है, सूरज अपने कानून पर चलता है, चांद अपने कानून पर चलता है, तमाम दरख्त अपने कानून पर चलते हैं, तो इंसान भी बगैर कानून के नहीं हो सकता। वो कानून उसका धर्म है, उसका दीन है, उसका मजहब है जो वो रखता है। तो इसलिए सबसे पहली चीज पहली चीज जो है वो ये है कि हमें गया ये दरख्त क्या बताते हैं। मैंने आपको बताया कि वो दीन के लिहाज से धर्म के लिहाज से हमें क्या सबक देते हैं। वो ये सबक देते हैं धर्म का सबसे पहला मकसद और उद्देश्य क्या है, वो ये बताए परमात्मा है और तुम्हारा ईमान उसके ऊपर तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, खुदा है और यकीनन है और उसके बगैर ये दुनिया कभी नहीं चल सकती और न मेरे अंदर की कोई मशीनरी चल सकती है। उसी ने मुझे बनाया है, उसी ने ये सब धार और दख्त बनाए हैं, इसलिए हमें सबसे पहले उसके ऊपर ईमान लाने की, उसके ऊपर विश्वास रखने की और दृढ़ मजबूत विश्वास रखने की जरूरत है कि वो मौजूद है। और उसके बाद कुरान शरीफ फरमाता है तो जरा गौर करो कि हम मिसाल बयान करते हैं एक अच्छे आदमी की जो ब्रह्मा या इब्राहिम था एक अच्छे दरख्त के साथ। तो अच्छे दरख्त की क्या क्या खूबियां होती हैं, वो कौन सा अच्छा दरख्त है, कौन सा अच्छा झाड़ है। वो झाड़ जो है मसलो कलमा तीन कई अदा तीन कशरा तीन कई अदा तीन, वो दरख्त बड़ा आला दर्जे का दरख्त है, उसकी मिसाल आला दर्जे के इंसान की मिसाल है। वो दरख्त कौन सा है, कई चार तरह पर होता है, यानी आला दर्जे का दरख्त कौन सा होता है, चार तरह पर यूं कि वो जब फैल जाता है तो साया देता है। ये खूबी है कि वो साया देता है,
उसके साए के नीचे लोग आते हैं और आराम पाते हैं, पहली चीज। दूसरे ये कि वो खुशबू देता है, खून उससे निकलते हैं और वो अपनी दोस्ती का पैगाम तुम्हें भेजता है। और मैं तुम्हें अपनी दोस्ती का पैगाम देता हूँ। ये फूल क्या है? इसका हमारे साथ दोस्ती का एक पैगाम है, संदेशा है जो हमें वो देते हैं। गफलत में न रहो। कौन है जो इन दोस्तों को, जिनके अंदर हमें कोई इतर की या दूसरी चीजों की बोतलें नजर नहीं आती, लेकिन इसी मिट्टी में से निकालकर खुशबू और पसंदी तुम्हें देते चले जाते हैं, किसरे से तुम्हारे दिमाग को और नाक को और तुम्हारे दिल को उससे राहत और खुशी होती है। चौथी चीज जो है वो ये है कि वो दरख्त जो है जड़ भी उसकी मजबूत होती है और उससे जो शाखें होती हैं वो भी बहुत चारों तरफ फैली। बहुत बड़ा दरख्त है, जितनी जड़ उसकी मजबूत है नीचे गई है उतने ही वो ऊपर गया फैला हुआ है। तो ये दरख्त है अथेकोलाहा, फिर वो फल भी देता है भाई, इतने काम छाया देता है, फूल देता है, फल देता है। और फिर फल देने में जो चीज उसके अंदर हमें नजर आती है वो ये है कि वो फल तो चीज को लहा सुंदर ही नहीं, एक फल वो है जो छह महीने के बाद या साल भर के बाद ये रख देते हैं। वो इस तरह से जब भी उनका मौसम आएगा, यहाँ तो भाई आम को 12 महीने फल लगा रहता है, लेकिन हमारे पंजाब में और हिंदुस्तान में साल भर में जब यह गया बरसात का मौसम आता है उस वक्त उसको भूख लगता है और उससे चीज के फल वगैरह आम जो है पैदा होते हैं। उसका एक खास मौसम, पहले फूल आएंगे और फिर उसके बाद फल आएगा। फूल क्या? फूल है वादा और फल है उस वादे का पूरा करना। जो प्रॉमिस उसने किया है, प्रॉमिस क्या था? उसने फूल लगाकर आपको एक आराम और संदेशा दिया, अब फल आने वाला है तुम्हारे लिए। फूल ने गया हमारे दिमाग को अगर खुशी दी थी तो फल के जरिए से हमारा जिस्म जो है उससे कई तरह की ताकत और कुवत हासिल करेगा। तो वो दो तरह का जो हमें संदेशा देता है, फूल आए तो फल दिया। अब इसके बाद ये चार किस्म से गया जो फायदे से हैं, फिर वो फल जो है वो क्या है? बस फल देखने में खूबसूरत होते हैं, बस फलों के अंदर खुशबू होती है। आप जब इसको सुनकर देखते हैं पता चलता है हाँ ये मीठा होगा, और जब सुनते हैं कि हाँ नहीं भी ये खट्टा होगा, तो इसी तरह से उसकी खुशबू से भी ये पता चल जाता है कि ये हमारे लिए मीठा होगा या खट्टा होगा। और फिर इसके बाद उसका फायदा ये होता है कि खाओगे तो तुम्हारे अंदर कितनी ताकत आएगी, कितना जोर आएगा, तुम्हारी कई बीमारियां दूर हो जाएंगी और जो तुम्हें जिन चीजों की ताकत और कुवत की जरूरत है वो फल ये तुम्हें देगा। तो ये जो चार किस्म के गया फल भी कि वो देखने में खूबसूरत है, जब देखो तो बड़ा खूबसूरत नजर आता है, हरा भरा हमारी आंखों को अच्छा लगता है और हमारी नजर के लिए ये नहायत जरूरी चीज है। अगर दुनिया के अंदर दस न होते तो लोग भी अंधे होते। ये ग्रीनिश मैटर जो है ये इंसान की आंख को ज्यादा गया तेजी देता है और रोशनी देता है। तो इसलिए ये दरख्त जो है ये गया ये काम भी देते हैं कि हमारी आंखों को खूबसूरत नहीं लगते बल्कि आंखों के अंदर रोशनी और उसके अंदर जो देखने की ताकत है उसको भी ज्यादा करते हैं। और फिर इसके बाद फलों को आप देखते हैं, किसी का जायका कुछ है, किसी का मजा कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो ये सारे के सारे चीजें जब जो है वो आपके लिए तैयार करता चला जाता है मगर किसके हुक्म से? इसने रब्बे आ अपने रब के हुक्म, खुदा ने हुक्म दिया उसको ये करता है, अपने आप ये कुछ नहीं कर सकता। ये बात गलत है कि दरख्त अपने आप कुछ करता है, वो अपने आप कुछ नहीं करता, इसने रब्बे आ अपने रब के हुक्म से वो करता है। भाई ये चार बातें जो मैंने आपको बताई हैं इसके अंदर बहुत से लेसन और बहुत से सबक। पहला लेसन जो है वो ये है कि आप जब किसी जगह दरख्त को लगाते हैं वो अपनी जगह नहीं बदलता। जहां आपने लगा दिया ये नहीं है कि आज यहां है तो कल वहां जाकर खड़ा हो जाए, परसों दूसरी जगह जाकर खड़ा हो जाए। जहां आप उसको लगाते हैं वहीं रहता, और कभी भी वो शिकवा शिकायत नहीं करता कि मुझको यहां क्यों लगा दिया, वहां क्यों नहीं लगाया। जहां आपने लगाया वहीं खड़े होकर अपना काम करना शुरू कर देता है। एक नेक आदमी भी हमेशा ऐसा ही होता है, जहां वो पैदा होता है उसी जगह रहकर वो अपना फायदा दूसरों को पहुंचाना शुरू कर देता है। ये नहीं कभी कहता ओ हम कभी मालदार के घर में पैदा होते तो हम दिखाते कि हम कितना पुण्य करते हैं, कितना दान करते हैं और कितना ये करते हैं वो करते हैं। हम राजा के घर में होते तो यूं करते और यूं करते। अरे हम खिला पहलवान के घर में होते तो यूं करके दिखाते, और अगर हम सिपाही होते तो हम यूं करके दिखाते। ये वो लोग होते हैं कि जो गया खुदा ने जो कुछ उनको दिया है उनकी जेब के अंदर है उससे नावाकिफ हैं, लेकिन जो नहीं मिला उसकी शिकायत करते हैं परमात्मा ने हमको ये नहीं दिया वो नहीं दिया, ये देता तो हम जून करते। अरे वो देता तो कुछ न करते। क्यों? कितने धनी लोग हैं کتنے روپے پیسے والے لوگ ہیں ان کے دل بند ہے، کوئی ان کے سامنے مر جائے جان نکل جائے تو وہ کبھی اس کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس لیے یہ روپیہ اور پیسے کی تمنا کہ ہمارے پاس روپیہ ہوتا تو ہم دن کرتے. ارے جو جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کر سکتے ہیں. وہ لوگ جن کو خدا نے آنکھیں نہیں دی وہ ہم سے زیادہ کبھی کبھی قابل ہو جاتے. تو ایک عورت کو ہم نے دیکھا جو ہیلنڈ پہلے کیا نام ہے اس کا، نہ اس کی آنکھیں ہیں نہ زبان ہے اس کی، ارے کچھ بھی نہیں. لیکن اس کا کبھی آپ علم دیکھیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ علم اس نے کہا کہ سیکھ لیا. اسی طرح سے جو سب سے ٹانگیں بھی نہ ہوں، ہاتھ بھی نہ ہوں، آنکھیں بھی نہ ہوں، کچھ بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ پرماتما کا فکر کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے. یہ درخت اور دھار تمہیں یہ کل اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے. جہاں کھڑے ہو تم، جہاں تم پیدا ہو گئے ہو، غریب کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، کسی طرح کنگال کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، لیکن اگر تم بننا چاہو جسے درخت آہستہ آہستہ رات اور دن بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی طرح تم بھی بڑھتے چلے جاتے ہو. اسی زمین کے نیچے سے وہ خوراک لیتا جاتا ہے، اسی اوپر سے دھوپ لیتا ہے، روشنی لیتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح سے ہر انسان کو خدا تعالیٰ نے بڑے بڑے خزانے دیے ہیں طاقتوں اور قوتوں کے. اس کے اندر بڑی انرجی ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہے کہ ایک آدمی اپنی انرجی اور طاقت سے دوسروں کو حیران کر سکتا ہے. ارے جس کا جس سے بڑھ کر انسان ہے، ہمالیہ کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے، اب آسمان پر پہنچنے لگا، ارے وہی قابلیت تو ہے اس کے اندر کہ جو آسمان پر پہنچا دیتی ہے. ایک شخص آسمان پر اڑتا ہے اور ہمارے لیے دماغ اپنی گھر کی چھت تک چڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی. یہ انسان انسان کے اندر فرق ہوتا ہے کہ کس طرح سے جو شخص ترقی کرتا ہے وہ کہاں پہنچتا ہے اور جو نہیں ترقی کرتا. مثلا میں وہاں تھا تو میں سان فرانسسکو میں، تو صبح اٹھتا گئی پانچ چھ میل میں چڑھائی چڑھاتا تھا، سیر کراتا تھا. تو ایک امریکن مجھے ملا چاہیے کہ ہم سے بڑے حیران ہوئے تم کا کہ آپ اس عمر میں پانچ چھ میل کا چکر صبح لگاتے ہیں. میں نے کہا ہم ہی لگاتا ہوں. کہیں مجھے کہو کہ دو گلاس جاؤ تو میں نہیں جا سکتا. تو آپ غور کیجیے کہ وہ لوگ جنہوں نے موٹریں بنائی، ہوائی جہاز بنائے، وہ بے شک آسمان پر اڑنے لگے لیکن زمین پر چلنا بھول گئے. زمین پر چلنا بھول گئے، آسمان پر اڑنے لگے. یہ چیز ہے کہ جو انسان جس ہمیں کیا لیسن دیتا ہے. دیکھو میں شکوہ شکایت نہیں کرتا، لگانے والے نے مجھے جہاں لگا دیا وہی کھڑے ہو کر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کس طرح سے ترقی کرتا ہوں، کرتے چلا جاتا ہوں. اسی طرح سے دوسرا لیسن جو ہے وہ یہ دیتا ہے کہ ہر ایک انسان کی زندگی جو ہے وہ دو طرح کی جو ہے گزرنی چاہیے. ایک زندگی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، اور ایک زندگی وہ ہوتی ہے دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے. جس جو کچھ کرتا ہے اس طرح آپ ذرا غور کیجیے کہ جس جو ہے وہ اگر سات ہزار نکالتا ہے تو ہمارے فائدے کی چیز ہے، اس سے فائدے کی چیز نہیں. اس کو کاربن چاہیے تھی، جو کاربن لے لیتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ ہمیں آکسیجن دیتا ہے. لیکن جو ہمارے فائدے کا بھی کام کرتا ہے، اپنے فائدے کا بھی کام کرتا ہے. اسی طرح سے اگر وہ سایہ دیتا ہے کہ آؤ گرمی کے مارے ہوئے تھکے ہوئے میرے پائے کے نیچے آؤ، میں تم کو آرام دیتا ہوں، تو اسی طرح سے ایک انسان کو بھی اس کے سائے سے کیا سبق سیکھنا چاہیے کہ انسان صرف اپنے لیے نہیں دنیا میں آیا، وہ دوسروں کو بھی فائدہ دینے کے لیے آیا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے آیا ہے. اس لیے وہ سر جو دنیا کے اندر آ کر کوئی کام نہیں کرتا، نام کر سکتا ہے، بھیک مانگتا ہے یا اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ اس وقت سے سبق سیکھے کہ وقت جو ہے کس طرح سے بڑھتا ہے اور کس طرح سے وہ سایہ پھیلا دیتا ہے. اسی طرح سے اچھا آدمی کیا کرتا ہے، محنت کرتے کرتے کارخانہ بناتا ہے اور اس کارخانے کے اندر کتنے ہزار آدمی آ کر کماتے اور اپنا پیٹ پالتے ہیں. اسی طرح سے جس طرح سے درخت نے سایادار درخت ہو کر سب کو سایہ دیا، اسی طرح سے ایک امیر آدمی اپنی محنت کے ذریعے سے کتنے آدمیوں کے لیے روٹی کا سامان پیدا کر دیتا ہے. تو اسی طرح سے دوسرا جو سبق اس نے یہ دیا کہ ہر ایک انسان کو صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ جڑ کی طرح سے جس طرح سے جڑ دے وہ بغیر کسی امید کے کہ دس ملے تو فائدہ دے گا یا نہیں دے گا، وہ تاریکی کے اندر اندھیرے کے اندر کام کرتی رہتی ہے اور اسے پھول درخت پھول کا مادہ پہنچاتی رہتی ہے یا پھل پہنچاتی رہتی ہے. اسی طرح سے ہر ایک انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے متعلق یہ سمجھے کہ میری زندگی میرے ہی لیے نہیں ہے، بلکہ میری زندگی دوسروں کے لیے بھی ہے، جو میری طرح کے انسان ہیں، میرے جیسے وہ بھی ہیں. اس لیے جہاں تک ہو سکے مجھے ان کے فائدے کے کام بھی کرنے چاہیے. جس طرح سے انسان کے اندر دو طرح کے گلینڈ ہیں، وہ گلینڈ وہ بھی ہیں جو میرے جسم کو بناتے ہیں، اور وہ گلینڈ وہ بھی ہیں جو دوسرے کی پرورش کرتے ہیں، اور وہ گلینڈ ماں کے اندر ہوتے ہیں. ماں کے اندر ہوتے ہیں کیونکہ ماں جو ہے وہ اپنے لیے اپنا جسم نہیں بناتی، اپنے بیٹے کے لیے دودھ بھی بناتی ہے، یہ تو اس کے باہر کی ایک چیز ہے، اس کے فائدے کے لیے جتنے اس کے بچے ہوتے جاتے ہیں سب کے لیے اپنا چشمہ دودھ کا جو ہے وہ آگے دیتی چلی جاتی ہے، دیتی چلی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب بہت ہو گیا، دو تین چار پانچ دس بارہ ارے جتنے ہوتے چلے گئے سب کے لیے وہ کھانا بھی تیار کرتی چلی جاتی ہے، اس کے گلینڈ کام کرتے چلے جاتے ہیں، آگے دودھ پہنچاتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے یہ آپ کو یہ چیز بتاتا ہے کہ کس طرح سے انسان کو اپنی زندگی جو ہے اس دنیا کے اندر اس کیا مقصد رکھنا چاہیے، آیا یہ کہ میں صرف اپنے لیے زندہ رہوں یا یہ بھی کہ میں دوسروں کے لیے زندہ رہوں۔ اور پھر حقیقت وہ شخص دنیا میں زندہ ہے جو دوسروں کے لیے زندہ ہے، جو اپنے لیے زندہ ہے اس کو سمجھے زندہ نہیں وہ مردہ، بالکل نکلنا ناکارا ہے جو اپنے لیے ہے، ہاں جو دوسروں کے لیے ہے اس کو آپ سمجھیے کہ وہ بے شک اس کی زندگی ایک زندگی ہے۔ اسی طرح سے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ زندگی جو ہے دوسروں کے لیے کس طرح سے پیدا ہوتی ہے، درخت کے اندر آگ بھی ہے اور اس کے اندر پانی بھی ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یوں آپ سمجھ لیجیے، انسان کے لیے غصہ بھی ہے اور انسان کے اندر نرمی اور محبت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، آگ بھی ہے اور اس کے اندر محبت بھی ہے، لیکن آدمی زیادہ جس چیز کو استعمال کرتا ہے وہ اپنی آگ۔ ہم نے کہا اچھا بھلا بتائیے آپ کی بیٹی کو کوئی بدماش آ کر ہاتھ ڈالے یا آپ کی بیوی کو ڈالے تو آپ کو کچھ غصہ آنا چاہیے، جو بھی کہیں کہ وہ نہیں آتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لے کر، یہ نہیں ہو سکتا نا۔ اس وقت گویا یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی غیرت دکھائے، اور ہر ایک انسان کو اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے لیے غیرت آتی ہے، اور نہ صرف انسان کو بلکہ مرغی سے مرغے کے اندر بھی یہ غیرت موجود ہوتی ہے، تمباکو گھر میں آتا ہے دوسرے مرغے کے ساتھ، مجھے اپنی مرغی کے پاس اس کو نہیں آنے دیتا، ارے کس نے اس کو یہ سبق دیا ہے غیرت کا کہ آپ اسی مرغی کے پاس دوسرے مرغے کو نہیں آنے دے گا، لڑ جائے گا وہ اس کے ساتھ جہاں بولے گا لیکن اس کے پاس نہیں آنے دے گا۔ معلوم ہوتا ہے غصہ بھی آہر کسی نہ کسی وقت ظاہر کرنے کی چیز ہوتی ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا لوگ ظاہر کرتے ہیں، اس لیے کبھی ہمیں غصہ آ جائے تو ہر ایک کی بات نہیں، لیکن محبت کو زیادہ بڑھاؤ۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جس سے یہ دنیا قائم ہے، اور اگر محبت دنیا کے اندر نہ ہوتی تو آپ جانتے ہیں یہ اولاد بھی نہ ہوتی۔ ارے ماں کیوں بچے کے لیے دکھ چاہتی، کیوں نہیں چیزوں کو چاہتی، وہ تو ایک ایسی چیز ہے، جتنا بچہ زیادہ دکھ لیتا ہے اتنا ماں کو زیادہ محبت آتی ہے، اور پھر ادھر کیا ہوتا ہے، ماں بچے کو مارتی ہے تو بھاگتا کدھر ہے، دوسرے کی طرف نہیں ماں ہی کی طرف بھاگتا ہے، ارے مارنے والے سے تو ہم بھاگ جایا کرتے ہیں، یہ مارتا ہے چلو بھاگو اس سے، لیکن بچے کو جب ماں مارتی ہے تو ماں ہی کی طرف بھاگتا ہے۔ اسی طرح سے آپ سمجھو کہ جتنا دکھ بچہ دیتا ہے اتنا ہی ماں کو اس کے اوپر پیار آتا ہے، اتنا ہی اس کے اوپر اس کی محبت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو پرانے شریف نے بتایا ہمیں، اور ہم تمہیں بتائیں دنیا کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے